आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजाराई जारी रहने के पेश नज़र एलपीजी के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जजगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज बिहार में बौद्ध गया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजाराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात मगरबी एशिया महाजाराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामनिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदाम का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का 6 कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे ये बात खासतौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जजगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। एक तफसीली रिपोर्ट।
आदाद शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला खवातीन को जज्जी के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली सेमाही में मिलने वाली जज्जी के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ये 70% थी, जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में खवातीन के हामला होने की मजमू शरह TFR 2% बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में ख्वातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियारात के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। यह भी कहा गया है कि जिन ख्वातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। पहले ये 33.3% थी, जबकि अब ये तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
म्यांमार के सदर मिन होंग यांग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बौद्ध गया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा, जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे। यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत देहाती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए दाते खारजा के तर्जुमान रणजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलों पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनअतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजीर आला के तौर पर फरायज अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून साज पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणि अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आजाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौमे तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौमे तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आजादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
गोवा की यौमे तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमाया किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौमे तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे, जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर सीएसआईआर एनआईओ कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
इस दौरान मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने गोवा के यौमे तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीमुशान इम्तिजाज है जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय ज़ियाफ़त का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फ़ख्र के मामले में अपना तआवुन जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज्यादा मौसर तरीके से निमटने के लिए सरहदी मुहाफिज फोर्स बीएसएफ को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में बीएसएफ एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटजिक एतबार से अहम 2 नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। جناب شاہ نے مزید کہا کہ بی ایس ایف کے قیام کے 60ویں سال کے موقع پر سرحدی حفاظت کے بی ایس ایف کے نظریے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب شاہ نے محض سرحدی سلامتی کے روایتی نقطہ نظر کو علاقائی سلامتی کے نئے نقطہ نظر سے بدلنے کے مقصد سے کوڈرینگولر سیکیورٹی گریڈ کے قیام کو متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج مغربی اتر پردیش، بہار، اوڈیشہ، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے ہریانہ، پنجاب، دلی، راجستھان، ودربھ اور چندی گڑھ میں ژالہ باری کے ساتھ آندھی طوفان کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ محکمے نے شمال مشرقی ریاستوں اور ساحلی کرناٹک میں گرج چمک کے ساتھ آندھی طوفان کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ مغربی مدھیہ پردیش اور تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ہانگ کانگ میں جاری 20 سال سے کم عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت مسلسل بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سونے کے 4، چاندی اور کانسے کے 2-2 تمغے سمیت کل 8 تمغے جیت کر درجہ بندی میں بھارت چین کے بعد دوسرے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ کل مقابلے کے دوسرے دن بھارتی ایتھلیٹس نے 4 سونے کے تمغے سمیت 7 تمغے جیتے ہیں۔ 19 سال کی پوجا سنگھ نے خواتین کی 1.3 میٹر کی ہائی جمپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارت کے لیے دیگر 3 سونے کے تمغے نتن گپتا، امانت کمبوج اور راہل جاکھڑ نے حاصل کیے ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے سیکنڈ کوالیفائر میچ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ اب کل احمد آباد میں کھیلے جانے والے فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئنز راجستھان رائلز بنگلورو آمنے سامنے ہوں گے۔ راجستھان رائلز کی جانب سے جیت کے لیے مقررہ 215 رن کے نشانے کو گجرات ٹائٹنز نے 8 گیند باقی رہتے ہوئے 3 وکٹ کے نقصان پر 219 رن بنا کر حاصل کر لیا۔ شبھمن گل نے سب سے زیادہ 104 رن بنائے، جنہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستھان رائلز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 214 رن بنائے تھے۔ ویبھو سوریہ ونشی نے سب سے زیادہ 96 رن بنائے، البتہ وہ ایک بار پھر سنچری بنانے سے چوک گئے۔ خواتین کرکٹ میں آج برسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس میچ میں بھارتی ٹیم 3 میچوں کی سیریز کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گی۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ جمعرات کے روز چیمسفورڈ میں کھیلے گئے افتتاحی میچ میں انگلینڈ کو 38 رن سے شکست دینے کے بعد بھارت نے سردست سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گجرات کے بھوج میں بھارت پاکستان سرحد پر واقع چوکی پر جوانوں سے بات چیت کی اور 14 نگرانی چوکیوں کا افتتاح کیا، اور کہا کہ سرحدی علاقوں کے لیے 4 رخی سیکیورٹی گریڈ بنے گی۔ اس خبر کو روزانہ پرتاپ نے جری سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزانہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ہاتھوں آپریشن سندور انجام دینے والے بہادر فوجیوں کے تجربات پر مبنی کتاب کے رسم اجرا کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ کتاب آپریشن سندور انجام دینے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ بھارت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ڈیجیٹل معیشت بن کر ابھرا۔ اسٹیٹ آف انڈیا ڈیجیٹل اکانومی 2026 کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے امریکی سر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کو بڑی اہمیت دی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق رائے میں پیش رفت ہوئی ہے، نیز آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی بلا تعطل بحالی یقینی بنائی جائے گی۔ آج کے بیشتر اخبارات نے اردو کے نام اور شاعر پدم شری ڈاکٹر بشیر بدر کے انتقال پر اردو دنیا ان کے مداحوں کی طرف سے زبردست خراج عقیدت پیش کیے جانے اور تعزیتی نشستوں کے اہتمام کی خبر پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا مہازرائی جاری رہنے کے پیش نظر ایل پی جی کے ذخیرے 30 دن تک برقرار رکھیں۔ خاندانی صحت کے قومی سروے سے ماں اور بچے کی صحت کے میدان میں بڑے فائدوں کا پتہ چلا ہے۔ ادارہ جاتی زچگی میں اضافہ ہو کر یہ 90.6% ہو گئی ہے، اور بچوں کی ٹیکہ کاری 96% ہو گئی ہے۔ میانمار کے صدر مین آنگ ہلینگ بھارت کے 5 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں آج صبح بہار کے بودھ گیا پہنچیں گے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج ملک کی بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارتی ایتھلیٹس کا بول بالا رہا۔ انہوں نے دوسرے دن سونے کے 2 تمغوں سمیت 7 تمغے جیتے ہیں، اور आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन।